सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय।
हम सभी लोग गृहस्थ के जीवन में आत्म कल्याण के लिए जो आवश्यक कार्य है, दान और पूजा, उसके बारे में विचार कर रहे हैं। पूजा में दोनों चीजें हैं, दान भी है और भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा का भाव भी है। और जब दान करते हैं तो दान में भी पूजा समाई है, क्योंकि दान गुणानुराग के बिना नहीं दिया जाता। जिसके प्रति हमारे मन में अनुराग होता है उसे ही हम अपनी, यहां तक कि अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो श्रावक के जीवन में उसके आत्म कल्याण के लिए दो चीजें हैं, उसमें से पूजा भी एक प्रयोग की तरह अभिषेक से समन्वित अगर होती है तो उसके जीवन में आत्म कल्याण में निमित्त बन जाती है। पूजा के कई मायने हैं, जिनमें पूजा के मायने हैं अपने जीवन को पवित्र करना, बाहर भीतर से मांजना, और जो सारभूत है उसे ग्रहण करना और जो असार है उसे छोड़ते चले जाना। और अभिषेक की प्रक्रिया अपनी राग द्वेष की मलिनता से मुक्त होने की प्रक्रिया है। भगवान के ऊपर छोड़ी गई जल की धारा हमारे अपने जीवन को निर्मल करे, ऐसी भावना के साथ अभिषेक किया जाता है। तो अभिषेक भावनात्मक भी है, क्रियात्मक तो है ही, और साइंटिफिक भी है। इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। पूजा में जिन आठ द्रव्यों का हम आलंबन लेते हैं उनके पीछे क्या उद्देश्य है? वे आठ ही द्रव्य क्यों रखे गए और एक एक द्रव्य का वही क्रम क्यों रखा गया? एक निश्चित क्रम क्यों है? क्यों नहीं हम पहले फल चढ़ा देते हैं और बाद को जल चढ़ाते हैं? और क्यों हम आठ ही द्रव्य चढ़ाते हैं, नौ और सात क्यों नहीं चढ़ाते हैं? इन सब बातों पर अपन को विचार करना चाहिए, ताकि उन सब की महत्ता, उन सब की महिमा अपन को मालूम पड़ सके और उससे अपन लाभ ले सके। भैया चीजों को जानने का अर्थ इतना ही है कि हम उनको जान करके उनसे लाभ ले सके। पूजा के 8 द्रव्यों में सब परिचित हैं कि जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य छोड़ दिया मैंने, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, ये 8 द्रव्य हैं। 9वां कोई द्रव्य नहीं है, अर्घ नाम का कोई द्रव्य नहीं है, अर्घ तो इन 8 द्रव्यों का सम्मिलित रूप है, द्रव्य तो 8 ही है। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, जैसे कि 8 कर्मों को नष्ट करके भगवान सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं, और जैसे कि शरीर में 8 अंग होते हैं, ठीक इसी तरह पूजा के भी 8 ही द्रव्य रखे गए हैं। हम उन्हें सम्यक दर्शन के 8 अंगों का प्रतीक मान लें, या कि 8 कर्मों का प्रतीक मान लें, या कि शरीर के 8 अंगों का प्रतीक मान लें, तो माना जा सकता है। और अलग अलग भावना के साथ हम उनको चढ़ाते हैं, हमारी अलग अलग भावनाएं होती हैं उनको चढ़ाते समय। जल चढ़ाते हैं भगवान के सामने, इन द्रव्यों के साथ जो कि आलंबन है, हमारा मन जुड़ना चाहिए, तब वो द्रव्य सार्थक है। और ऐसे तो इस कटोरे में से उठा के दूसरे किसी कटोरे में जल चढ़ा दिया, इस थाली में से उठा के उस थाली में अक्षत चढ़ा दिए, ऐसा तो अपन कई कई बार करते हैं, लेकिन उसके पीछे वो चीज हमें क्या संदेश दे रही है, या हमें उससे क्या संदेश ले लेना चाहिए, और उन क्षणों में हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए। क्रियाएं तब परंपरा बन जाती हैं, रूढ़ी बन जाती हैं, जब उनके पीछे छिपा हुआ रहस्य या कि अर्थ खो जाता है। लिखा हुआ है उन्होंने कि रिचुअल्स क्या है, रूढ़ियां क्या है, ऐसी धार्मिक क्रियाएं जिनमें से भावनाएं निकल जाती हैं, वे सब धार्मिक क्रियाएं रूढ़ी कहलाती हैं, जिनमें कि कोई उसके पीछे उद्देश्य, उसके पीछे भावना, उसका ख्याल ही नहीं रहता है, और हम क्रिया दोहराते चले जाते हैं, तो वो कहलाती रूढ़ी, ट्रेडिशंस जिनको अपन कहते हैं। ट्रेडिशन शब्द तो बहुत थोड़ा अच्छा शब्द है, रिचुअल शब्द है उसके लिए, रूढ़ी बन गई। और रूढ़ी का तो ऐसा है कि जब जैसे बनाना चाहो वैसी मान्यता बना लो और वैसा जीवन जीना शुरू कर दो। क्या हुआ था एक बार कि एक परिवार में, और बहू आने को थी और बारात लौटने वाली थी, तो सब तैयारियां चल रही थी। उतने में क्या हुआ कि पता नहीं कहां से कैसे, और चूल्हे के पास में, और देखा कि एक बिल्ली मरी पड़ी हुई, अब उधर बारात आने वाली और इधर बिल्ली मरी पड़ी हुई। तो अब सासू ने क्या किया कि अब सबको कोई को हल्ला करें, उससे बेहतर है कि उसको ढक दो। तो उन्होंने एक टोकनी ला करके उसको ढक दिया चूल्हे के पास। अब वो ढक करके भूल गई, बहू आई, लड़का आया, तो उसी में लग गई। अब लग गई और बात उनके मन दिमाग से उड़ गई। जब बहू को चूल्हा पूजने के लिए ले जाया गया, तो धीरे से बहू ने उसको टोकनी को उठा के देखा, तो उसमें एक बिल्ली मरी हुई थी। बहू को यही समझ में आया कि कोई ना कोई एक परंपरा होगी, कोई ना कोई एक दस्तूर होता होगा ये। अब ठीक है, रिचुअल्स कैसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं। और बस फिर बाद में अब बात आई गई हो गई, और 20-22 साल के बाद जब उस बहू के बेटे का विवाह हो करके और वापस आने वाली थी बारात, तब बहू ने जिद पकड़ ली कि वो तो एक बिल्ली चाहिए मरी वाली, और फिर उसी स्थिति में पड़ी हो और हम ढांकेंगे उसको, क्योंकि हमारी सास ने ऐसे किया था जब हम घर आए थे। अब बताइए आप, इस तरह से बन जाती हैं परंपराएं। और पता भी नहीं लगता अपने को, चढ़ा रहे हैं द्रव तो चढ़ाते आ रहे हैं, अब पता ही नहीं है कि मैं जल क्यों चढ़ा रहा हूं। लिखा हुआ उसमें कि जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्पामती स्वाहा, तो जल ही क्यों जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करने वाला है, चंदन क्यों नहीं है? ऐसा कभी मन में विचार आया आपने? कभी नहीं आता है। पर आना चाहिए, सोचना चाहिए कि आखिर जल को क्यों हमने उसका प्रतीक माना, हमारे जन्म जरा और मृत्यु को नष्ट। जन्म जरा मृत्यु को नष्ट कौन करता है? पीयूष है विषय सौख विरेचना है, पीते सुसी कृमिटती चिरवेदना है, भाई जरा जनन रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। जिनेंद्र भगवान की वाणी जिन वाणी जो कि ज्ञान की प्रतीक है, वो ज्ञान जो है वो हमारे जन्म जरा मृत्यु को नष्ट करता है, और जल प्रतीक है ज्ञान का। जल को प्रतीक माना है ज्ञान का, तो ज्ञानावरणी कर्म के नष्ट होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए दो दो अर्थ एक साथ निकलते हैं कि हम जल चढ़ाते हैं ज्ञानावरणी कर्म के क्षय और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ताकि जन्म जरा मृत्यु का नाश कर सके। और जल मैसेज देता है, वो हमेशा अपने स्वभाव में रहता है, कभी अपने स्वभाव से विमुख नहीं होता। शीतलता उसका स्वभाव है, उसे कितना भी गर्म कर दो लेकिन जैसे ही उस गर्मी के संपर्क से बाहर आता है अपने शीतल स्वभाव में ज्यों का त्यों आ जाता है। जिसमें मिक्सअप कर दो उसमें मिक्सअप हो जाता है। सबसे घुलने मिलने वाला ज्ञान वास्तविक वही है जो कि सब में घुल मिल सके, जिसमें कि सब समा सके। केवल ज्ञान जिसमें कि तीनों लोक के अनंत पर्यायों से युक्त क्षणों द्रव्य समाये हुए हैं, वही तो ज्ञान है। ज्ञान से पतली चीज कोई नहीं है और पानी से पतली चीज कोई नहीं है। इसलिए पानी जो है वो प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है। तो इस तरह अगर हम विचार करें तो हमें जल उधर हमने भगवान के चरणों में चढ़ाया है कि जैसे ये अपने स्वभाव में रहा आता है ऐसे ही मैं भी अपने स्वभाव में रहूं, जैसे कि ये ज्ञान का प्रतीक है ऐसे ही मैं अपने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लूं, अपने ज्ञानावरण कर्म को नष्ट कर दूं। जिनेंद्र भगवान की वाणी का सदुपयोग इतना ही है कि मैं अपने जन्म जरा और मृत्यु को निवारण कर सकूं, तो ही मेरा ज्ञान कार्यकारी है। नहीं तो ऐसा ज्ञान तो बहुत लोगों के पास है। और दूसरी चीज, मैं सबसे मिक्सअप होकर के रहूं। जल सबसे मिक्सअप होना सिखाता है। और दूसरी चीज चढ़ाते हैं हम, चंदन चढ़ाते हैं। भव आताप विनाशनाय चंदनम निर्पामती स्वाहा। भव का संताप किस बात से है? भव में संताप जरा सा विचार करें अपन। भाव में संताप है हमारे अपने राग द्वेष के परिणामों की वजह से। और राग द्वेष कब होता है? जबकि अल्प ज्ञान होता है तब राग द्वेष होता है। और अगर जानने की जिज्ञासा ना हो, सिर्फ देखना ही हो, जस्ट सी किसी भी चीज को, कैसी है, कहां से आई, किसकी है, ये कोई प्रश्न नहीं है, सिर्फ देख रहा हूं और देखने का आनंद ले रहा हूं, सिर्फ अकेला दर्शन हो तो उसमें विकल्प नहीं होता। ऐसे निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति तो दर्शनावरण कर्म के अभाव में होने वाले अनंत दर्शन से ही प्राप्त हो सकती, जो कि आत्मा का स्वभाव है। तो भाव आताप मिट सकता है जबकि मेरे राग द्वेष मिटे, और राग द्वेष तभी खत्म होते हैं जब निर्विकल्प अवस्था हो। निर्विकल्प अवस्था तो दर्शन में ही है, इसलिए मैं अपने दर्शनावरणी कर्म को नष्ट करके अनंत दर्शन प्राप्त करके और भव आताप मिटा सकता हूं, इसलिए मैं चंदन चढ़ा रहा हूं। ऐसा है ये चंदन चढ़ाने का हिसाब। और चंदन की अपनी विशेषता है भैया, जितनी भी पूजा की सामग्री है वो सब मंदिर तक सीमित नहीं रखना चाहिए, वो जीवन तक आनी चाहिए। वहां हम जल चढ़ा के आए हैं और यहां हम मिक्सअप नहीं हो पा रहे हैं लोगों के बीच, तो हमारा जल चढ़ाना जो है वो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाया। जितना हम वहां प्रैक्टिकल करके आए हैं वो बाहर जीवन में, व्यवहार में भी, चर्या में भी, जीवन में भी आना चाहिए। मंदिर की देहरी तक सारे द्रव्य सीमित न रहे, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि मंदिर से बाहर निकलने पर भी वो चीज हमारे जीवन में बनी रहनी चाहिए। चंदन अकेले भाव आताप को नहीं मिटाता है, बल्कि चंदन जीवन में शीतलता भी देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे के जीवन में घाव ज्यादा करते हों और शीतलता कम पहुंचाते हों। उसके घावों पर हम चंदन लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते, या कि अपने जीवन से दूसरे को घाव ही पहुंचा देते हैं। ये विचार हमें चंदन चढ़ाते समय नहीं करना चाहिए क्या? कह तो हम रहे हैं कि भाव आताप, हम अपने भाव के संताप को मिटाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे को हमारे जीवन से संताप पहुंच रहा हो। दूसरे को हमारे जीवन से संताप पहुंच सकता है, वो उसकी अपनी राग द्वेष की परिणति है, लेकिन मेरा अपना दूसरे को संताप पहुंचाने का कोई इंटेंशन तो नहीं है। इतना तो हम देख ही सकते हैं अपने भीतर झांक करके, तो वहां जब हम चंदन चढ़ाएं तो हमारे मन में ये ध्यान आ जाए कि ऐसा ही चंदन के समान मेरा भी जीवन हो, जो खुशबू भी देता है, शीतलता भी देता है। एक किसी शहर में और बहुत सारे साधु सज्जन पुरुषों की सभा होनी थी, बहुत साधु संत वहां आते ही चले जा रहे थे। अब व्यवस्था करने वाले भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज्यादा संख्या में लोग वहां पहले से उपस्थित थे। उतने में खबर आई कि गुरु नानक भी आ रहे हैं। लोग नहीं परिचित थे उनसे अधिकांश। उन्होंने कहा, अरे ऐसे बहुत सारे साधु जी आते रहते हैं, अब यहां जगह ही नहीं है, कहां कहां तक हम किसको बुलाते चले जाएं। तो उनके पास जो है, अब ज्ञानी तो ज्ञानी की भाषा में ही बात करेगा, तो वहां के जो मुख्य आयोजक थे, जो साधुओं में प्रमुख थे, वही आयोजन कर रहे थे। तो उन्होंने उनके भरा हुआ दूध का गिलास भेज दिया, बिल्कुल लबालब भरा हुआ, एक बूंद भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं डाली जा सकती थी, ऐसा भेज दिया। तो वो समझ गए कि ये कहना चाह रहे हैं कि अब यहां पर जगह तो पूरी भर चुकी है, अब आप आ रहे हो तो ठीक है, लबालब भरा हुआ, समझ गए वो। लेकिन उन्होंने भी जो है भरा हुआ गिलास ज्यों का त्यों वापिस किया, और मालूम क्या किया उसके साथ, उसके बाजू में एक फूल लगा दिया और थोड़ी सी केसर उसके ऊपर डाल दी और वापिस लौटा दिया। समझ गए जितने भी संत थे कि जो आने वाला है वो बहुत पहुंचा हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, वो पूरा भरा हुआ है, जगह बिल्कुल नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके पास रह करके इस फूल की तरह खुशबू फैलाएंगे और आप में मिक्सअप हो जाएंगे, वो जो चंदन, वो जो केसर हमने उसमें मिला दी, उससे वॉल्यूम नहीं बढ़ा है आपका, एक बूंद भी हमने ज्यादा नहीं, बस कलर पर चेंज हो गया, हम आपके पास आकर के और कुछ नहीं करेंगे। क्या इस तरह का हमारा अपना स्वभाव बन सकता है? हमारी अपनी प्रेजेंस किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति दूसरे के जीवन में खुशबू देती है, दूसरे के जीवन में शीतलता देती है, दूसरे के घाव पर मरहम लगाती है। तो सचमुच हमारी पूजा करना सार्थक हो गया, हमारा चंदन चढ़ाना सार्थक, वरना तो चंदन रोज चढ़ाते हैं, लेकिन वो चंदन हमारे जीवन को चंदन के जैसा नहीं कर पाता है अगर, तो हमारा वो चंदन चढ़ाना अधूरा रह जाता है। उसके बाद नंबर आता है अक्षत का। अक्षत प्रतीक है, अक्षय पद प्राप्त है, अखंड पद की प्राप्ति के लिए मैं अक्षत चढ़ा रहा हूं, और वो अक्षत मुझे प्राप्त कैसे होते हैं, अक्षत ही क्यों रखे हैं? चावल हैं उनको हम अक्षत कह देते हैं, कहां से लाएं और ऐसी चीज जो कि अखंड हो कहां है हमारे पास। तो हमने चावल को चुना है, उसके ऊपर के धान को छिलके को हटाने के बाद और उसके भीतर जो लालिमा है उसको भी हटाने के बाद उज्जवल अक्षत प्राप्त होते, चावल प्राप्त होते, वो प्रतीक है, वो अखंड पद की प्राप्ति के प्रतीक है कि मैं ठीक ऐसा ही अखंड होना चाह रहा हूं। और इतना ही नहीं, अक्षत पना काहे से प्राप्त होता है भैया, ये भी विचार कर लें थोड़ा सा। हमारे जीवन में हम अखंडित नहीं रह पाते हैं, सुख और दुख कम से कम दो चीजें तो हमेशा लगी रहती, कभी भी हम अपने स्वभाव में नहीं रह पाते हैं तो सुखी या कि दुखी, बताइएगा। तीसरी कोई स्थिति आती है, तटस्थ स्थिति आती है सुख और दुख के अलावा, कभी सुख महसूस करते हैं कभी दुख महसूस करते हैं, तीसरी स्थिति तक का तो कभी अनुभव ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि वेद नहीं करने लगा हुआ। तो मैं क्या चाहता हूं? अखंड होना चाहता हूं, मैं अपने आत्म स्वरूप को इस सुख दुख से परे वाली स्थिति को प्राप्त होना चाहता हूं, इसलिए मैं अक्षत चढ़ा रहा हूं अपने वेदनी कर्म के नष्ट करने के लिए। जब तक वेदनी कर्म विद्यमान है तब तक मैं उस अक्षय पद की प्राप्ति का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, मैं सुख और दुख में ही डूबता और उठता रहूंगा। अब उस अक्षत को प्राप्त कैसे किया जाता, जो कि हम चावल उसके प्रतीक हैं, तो वो भी प्रतीक है हमारे ऊपर, हमने जो छिलका चढ़ा हुआ था उसको हटाया है, वो हमारे घातिया कर्म है, वो जो लालिमा है वो हमारे अघातिया कर्म है। उन सब कर्मों को जैसे हम नष्ट करके उस अखंड पद को प्राप्त करते हैं, वेदनी कर्म भी बिल्कुल लास्ट मूवमेंट पे जाता है, मोहनी वगैरह पहले जाते हैं, तब जाकर के एक तरह से देखना चाहिए। अगर वेदनी कर्म को नष्ट करना है, एक तरह से सारे कर्म ही नष्ट हो गए, बचा क्या फिर? तो इसलिए कह रहे हैं कि हमने अक्षत चढ़ाए हैं, उसको चावल प्रतीक बनाया है, वो भी इसी बात का प्रतीक है कि ऊपर का छिलका हटा है, लालिमा हट गई है सारे कर्म हटने के बाद। और चावल की विशेषता है, दोनों उंगलियों के बीच प्रेशर दो, उंगली में तकलीफ होने लगेगी, टूटता नहीं है, वो अखंड है। वो हमारा अपना जीवन जरा गौर से देखें कितना खंडित है, जहां पहुंचते हैं वहां उस जैसा चेहरा लगा लेते हैं, टूटे टूटे जीते हैं, अखंड तो जी नहीं पाते। एक जीवन की धारा सब जगह दिखाई पड़ती क्या हमारे जीवन में? मंदिर में हम कुछ और होते हैं, दुकान में कुछ और होते हैं, घर में कुछ और होते हैं, बाहर कहीं कुछ और होते हैं, पता नहीं कितने रूपों में खंड खंड होकर के जीते हैं। जैसे कि नदी की धारा अगर एक जैसी बहती जाए तो समुद्र तक पहुंचती, और बीच में अगर जितने भी रोड़े आते हैं, जितने भी पत्थर आते हैं तो भाई फर्केट हो जाती है। एक पत्थर आया तो एक इधर से धारा, एक इधर से धारा। हमारा जीवन भी तो इसी तरह से हमने खंड खंड अपने हाथ से कर लिया है, अपने राग द्वेष से, अपने सुख और दुख के अनुभव से हम अपने को खंडित करते। जहां हमें सुख मालूम पड़ता, जहां हमें लाभ मालूम पड़ता है, वहां हम झुक जाते हैं। और कौन सा? वो भी सुख और वो भी लाभ, कौन सा? वो भी बहुत सांसारिक। और उसी में हम उलझ करके रह जाते हैं, भगवान के सामने चावल चढ़ा करके क्या हम भावना भाते हैं कि भगवान जैसे ये चावल अखंड हैं, जैसे कि ये अब उगेंगे नहीं बोने के बाद, ऐसे ही मैं भी उस पद को प्राप्त करना चाहता हूं जो कि अखंड है, जिसमें बार बार इस संसार के जन्म मरण के सुख और दुख को नहीं भोगना पड़ता है। मैं उस वैसे अखंड पद को पाने के लिए चावल चढ़ा रहा हूं। बाहर निकले अपन तो ध्यान तो बना रहे अपनी अखंडता का, जरा में हमारी अखंडता जो है वो नष्ट हो जाती है, जरा से बाह्य संपर्क में हम सुखी और दुखी होकर के अपने को और उसी रूप मानने लगते हैं, अपने उस अखंड स्वभाव को। संदेश अगर हम पूजा के द्रव्यों से ले लेवे तब तो पूजा करने का आनंद ही कुछ और हो। कोशिश करिएगा कभी एकाध बार उस समय ये ध्यान बना रहे, या कि पूजा के द्रव्य चढ़ा के बाहर आए और ध्यान बना रहे कि देखो हम कैसे जो है वो अपने जीवन को खंड खंड कर लेते हैं, कैसे हम राग द्वेष में पढ़ करके और अपने को सुखी दुखी मान लेते हैं, हमारा स्वभाव तो कुछ और ही है। और एक और द्रव्य की चर्चा कर लें, पूरी तो ना हो पाएगी। आधी रह जाएगी। चार द्रव्याज कर लेते हैं, चार फिर चढ़ा लेंगे, ऐसे ही सही। पूजा में ऐसा नहीं करना, ये तो हम समझाने में कर रहे हैं, नहीं तो आप कहो कि चार आज चढ़ा लो तो अब चार ही कल चढ़ा लेंगे, पूजा में तो आप आठ ही चढ़ाना। पर समझने के लिए तो इतने ही समझ पाएंगे अपन। उसके बाद आता है नंबर पुष्प का, काम बाण विनाशनाय पुष्पम। पुष्प जो है वो काम शर कहलाता है। काम बाण वासनाएं इच्छाएं जो हमारे भीतर पांचों इंद्रियों के भोग की, जो भौतिक सुखों की जो लालसा है, वो प्रतीक है। पुष्प उस बात का प्रतीक है, फूल को प्रतीक माना गया है। हमारे भीतर उठती हुई पांचों इंद्रियों के विषयों की लोलुपता का प्रतीक है। लेकिन जरा सा देखें कि मेरे अंदर जो ये कामनाएं और इच्छाएं उठती हैं वो काहे की वजह से उठती हैं। अगर गौर से देखें तो मेरे मोह की वजह से और कुछ नहीं। मैं जहां आशक्त हो जाता हूं वो चीज मुझे प्यारी लगने लगती है, और जहां मेरी आशक्ति नहीं है वो चीज मुझे बेकार मालूम पड़ने लगती। इस पेन को मैं अगर थोड़ा सा अच्छा लगने लगे तो बस वो प्रतीक है इस बात का कि मेरी आशक्ति है। जो जो चीज अच्छी लगती है, अच्छी होना अलग बात है और अच्छी लगना अलग बात है, ध्यान रखना, नहीं तो आप दोनों गड्ढमड्ढ कर दो। हाँ, कोई चीज अच्छी होती है वो सबको अच्छी लगती है, और कोई चीज अच्छी लगती है वो इंडिविजुअल अपनी चॉइस है, वो अपने मोह का परिणाम है। पानी बरसे और अगर बाहरें सूख वो सामान सूख वे डर हो तो पानी 70-100 लग है, और अब भाई जो है आपने दो पहुंच के कचू चीज बारे रखी है, या कि खेत में अब भी बीज बोया हो पानी गिरे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अमृत बरस गया, पानी बरसा है वो। लेकिन आपके अपने आशक्ति पर निर्भर करता है कि आप उसे अच्छा कहेंगे कि बुरा कहेंगे। जितनी भी सांसारिक वस्तुओं के प्रति भले और बुरे की कामना है वो सब हमारे मोह का परिणाम है। मैं थोड़े से पुष्प चढ़ा करके क्या भावना भा रहा हूं, एक तरफ अपने काम बाण विनाश के लिए पुष्प चढ़ा रहा हूं, दूसरी तरफ देखा जाए, मैंने कहा था कि दोनों समझते चलेंगे अपन, आठ कर्मों को भी नष्ट करते, मैं अपने मोहनी कर्म को नष्ट करता हूं। क्योंकि जितनी आशक्ति है मेरे अंदर वो सब मेरे अपने मोहनी कर्म की वजह से आशक्ति है। भैया अपने जीवन में अगर हम पुष्प के बारे में कोई संदेश पुष्प से लेना चाहें, पुष्प को तो हमने कह दिया कि हमारी काम वासनाओं का प्रतीक है, लेकिन और भी उसके, एक ही चीज नहीं है उसके भीतर, और भी बहुत सी क्वालिटीज हैं उसके भीतर। पहले नंबर की चीज तो ये कि एक दिन एक लिली फूल होता है, एक दिन का जीवन होता है, इतना सुंदर होता है कि सुभग नाम कर में उसका जो देखता है लपकता है उसको लेने के लिए। कोई भी ऐसा कितने ही घृणा करने वाला व्यक्ति भी होगा एक बार देखेगा इतना सुंदर होता है, क्योंकि उसके सुभग गुलाब के फूल का सुभग नाम कर्म है उसका अपना, एक इंद्री जीव है लेकिन उसके भी सुभग नाम कर्म का उदय है। जो देखता है उसको पाने की कोशिश करता, लेकिन साथ में उसके पाप कर्म का उदय है, ध्यान रखना। आकर्षण तो दे रहा है, वो सबको आकर्षित कर रहा है, लेकिन अपनी जान देकर के दूसरे को सुख पहुंचा पाता है? हाथ में तभी आता है जब वो मर जाता है। बताइए कितनी देर लगना है, जरा सा तोड़ करके हाथ में ले लिया खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद भी, एक दिन का जीवन होने के बाद भी वो हमें क्या संदेश देता है कि दूसरे को कुछ हम दे करके मरे हैं, हमने जिया भी है अपना जीवन तो पूरे खुश होकर के और दूसरे को लाभान्वित करके। क्या इस तरह हम फूल से कोई संदेश नहीं ले सकते कि कितना छोटा सा जीवन है लेकिन कितना खुश है, हंसी खुशी से और अपना जीवन जी रहा है। हम क्यों नहीं अपने जीवन को भी उस फूल के समान एक दिन का मान लें और आनंद के साथ जिएं? लेकिन ऐसा कहां हो पाता है? अगर कोई व्यक्ति एक दिन का जीवन मान ले भैया तो आशक्ति वाशक्ति सब खत्म हो जाएगी, कहां रहेगी आसक्ति? एक ही दिन है, आप खुद मान लो, कभी कभी सोच करके तो देखो कि अगर आज ही एक दिन बचा है, कल मुझे खत्म हो जाना है, जीवन नष्ट हो जाना, तो आज कौन होगा जो कि राग द्वेष करेगा? बड़े प्रेम से जिएगा सबके साथ कि भैया एक ही दिन। तो अपन देखो, जब ट्रेन में किसी से मिलते हैं तो कितने प्यार से बात करते हैं, क्यों? अभी इनकी गाड़ी रुकेगी, इनको उतर जाना, हमें उतर जाना, जितनी देर हो उतनी देर अच्छे से बैठ लो। और जिनके साथ जिंदगी भर रहे तो उनसे कबूल नहीं करते ऐसा, जिनसे एक दिन के लिए मिलेंगे, हाँ ये है अपन लोगों के साथ। इससे हमें संदेश ले लेना चाहिए कि एक दिन का जीवन मान करके हम बहुत सुख से रह सकते हैं कि मेरा तो एक ही दिन का जीवन है। अब आसक्ति से क्या मतलब है, राग द्वेष करने से क्या मतलब है, मैं सबके प्रति प्रेम रखूं। राग द्वेष से परे की अवस्था है प्रेम। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करें। मेरा मोह मुझे सुख दुख में डाल देता है, और अगर इस मोह को मैं छोड़ दूं तो सुख दुख दोनों से पार होकर के भी मैं और इस फूल के समान अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूं। क्या ऐसा हम संदेश नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। इस तरह हमने इन चार द्रव्यों से जो भगवान के सामने चढ़ाए हैं, कामना करी है अपनी, और साथ में अपने जीवन को भी परिवर्तित करने का संदेश ले लिया है। वर्णी जी तो हमेशा कहते थे कि भैया कितो पढ़ो लिखो भी होए, लेकिन जीवन में उसके उस पढ़ाई लिखाई की झलक ना आवे। कितना भी त्यागी व्रति हो वो, और जीवन में उसके त्याग तपस्या की झलक ने आवे। कितने भगवान का भक्त हो वे, भगवान की पूजा करता हो वे, लेकिन जीवन में उसके पूजा से कोई निर्मलता न आवे, तो उसकी पूजा, उसकी त्याग तपस्या, उसका ज्ञान, वो सब उसके जीवन में बोझ के समान है। चंदन भार वाही, चंदन के बोझ को अपने कंधे पर उठा करके पीठ पर लाद कर तो गधा भी चला जाता है, ऐसा कहते थे। लेकिन उस चंदन से लाभान्वित नहीं हो पाता है तो गधे के बोझा के समान है, चाहे ज्ञान हो, चाहे व्रत नियम हो, चाहे पूजा पाठ हो, ऐसा कहते थे। तो और कहते थे अपने जीवन से ही इनका संदेश निकल आता है। एक घटना सुनाते थे, वो आपको सुनाए देता हूं, इसलिए कि इन चारों द्रव्यों से हमने जो संदेश लिया है वो जब तक जीवन में नहीं झलकेगा तब तक कोई लाभ नहीं होने वाला। एक हमने शायद पहले, हमें ध्यान नहीं आ रहा, फिर सुनाने लगते तो ऐसा लगता कि सुना चुके हैं, बहुत सी बातें सुना चुके हम तो, और अब तो बहुत सी बातें, बहुत सा थोड़ा सा समय बाकी रह गया, एक दिन और हमारे पास है, कल का दिन, उसके बाद फिर इतवार। और मैंने मन बना लिया है कि इसके बाद आपसे मिलूंगा अगले इतवार को, बीच में नहीं मिल पाऊंगा आपसे, बीच में मैं अब थोड़ा सा गैप करूंगा। कल और अपन चार द्रव्यों पर समझेंगे, और उसके बाद सुबह वाली सभा ड्रॉप कर देंगे। आज ये मान के चलिएगा कि आज और कल का दिन बहुत कीमती है, फिर उसके बाद। तो जीवन में परिवर्तन कैसे आवे, हमने शायद वो घटना आपको सुनाई थी, वो बर्णी जी बहुत सुनाते थे कि भैया अपने जीवन से मालूम पड़ने लगता है कि कितना क्या हमारे जीवन में इन सब बातों का असर हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक व्यक्ति था, उसको गांव में सब लोग जो है मूर्ख कहते थे। वो सीधा साधा भोला भाला था, कुछ समझता नहीं था, ज्यादा पढ़ा लिखा भाई नहीं था, मूर्ख तो था ही, लेकिन कोई भी आदमी अपने को मूर्ख सुनना पसंद तो नहीं करता, भले ही मूर्ख रहा हो आवे है। तो उसको सब लोग मूर्ख कहते थे कि बड़ा मूर्ख है। अच्छा, और अज्ञानी होने से वो ऐसी क्रियाएं भी करता था मूर्खतापूर्ण, के लोगों को कहना ही पड़ता था, जानबूझ के नहीं कहते थे उसको चिढ़ाने के लिए, वो ऐसे काम करते तो कि उसको मूर्ख लोग कहते थे, कैसे मूर्ख है। उसको बड़ा दुख होता था कि देखो सब जने मूर्ख के थे। फिर उसको समझ में आई कि जीवन में सबकी आदत बन गई हमें मूर्ख के भी की है, तो हम उससे यार अभी तैसे चलो अपन। उसने कहा ठीक चलो दूसरे गांव में। दूसरे गांव में उसने अपने घर से शुरू किया, रास्ते आधे रास्ते पहुंचे होंगे, दूसरे गांव पहुंचने वाला था, उतने में एक प्यास लगाई उसको, सो कुएं पे बैठ गया। अब कुएं पे बैठा सो भैया जी ने कहा करो, अब हते तो मूर्ख
तो लेकिन पांव तो डाल रहे दो ये उतर भी कुआं में और बैठे आराम से। अब एक और वहां से दूसरे गांव की तरफ से आता दिखाई पड़ा आदमी, सुजी अपने बैठे हैं आराम से। तो वो जैसे ही इस पे आया कुएं पे, तो उसने के मुंह से भी निकला, अरे भाई कैसा मूर्ख है। तो उसने कहा कि तुम कौन गांव से आए? कहते हम उस गांव से आए। कहते तुम्हें कैसे मालूम? हमारे गांव के लोग बैठे थे तुम्हें बतावे कि हम मूर्ख हैं। अरे कहते गांव के लोगों की जाने की जरूरत का है, तुम्हारी करतूत बता रहे कि तुम मूर्ख हो, पांव तुम उसमें लटका के बैठे हो, यही मूर्खता है। वर्णी जी सुधारण को देखे कहते थे कि हमारा जीवन खुद बताता है कि हम कैसे हैं, हमें ज्ञान हासिल हो गया है कि नहीं, हमारे भीतर त्याग तपस्या आई है कि नहीं, हमारे भीतर पूजा पाठ का कोई असर पड़ा है नहीं, ये क्रियाओं से मालूम नहीं पड़ेगा, हमारे जीवन से मालूम पड़ेगा। हमारे पूजा करने की क्रिया से नहीं मालूम पड़ेगा कि हम कितने पुजारी हैं, हमारे जीवन जीने की स्टाइल से मालूम पड़ेगा कि कितनी हम पूजा की है और कितने वर्षों से करते हैं, कितनी त्याग तपस्या हमने की है, कितने व्रत नियम हमने पालन किए हैं। ये व्रत नियमों की फेरिस्त बनाने से नहीं मालूम पड़ेगा, जब हम बात करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ इनके जीवन में व्रत नियम कितने आए हैं। ज्ञान हमारे पास रखी हुई पोथियों से मालूम नहीं पड़ेगा कि इनके पास इतनी पोथियां इतने शास्त्र हैं या कि हमें इतने श्लोक कंठस्थ हैं, इससे ज्ञान मालूम नहीं पड़ेगा। ज्ञान तो इससे मालूम पड़ेगा कि अवसर आने पर हम दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। हमारा ज्ञान हमारे जीवन को निर्मल करता है, हमें राग द्वेष और हमारी कषायों को मंद करता है, या कि ज्ञान हमारे जीवन में अहंकार पैदा कर देता है। बस भैया इसी अपेक्षा से इन चारों द्रव्यों से हम कोई संदेश अपने जीवन में ले सकें तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये द्रव्य भी हमें संदेश देते हैं, पूजा भी हमें संदेश देती है, इसी भावना के साथ कि पूजा हमारे जीवन को निर्मल करे। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
दो मिनट को थोड़ा सा बैठेंगे डॉक्टर साहब,
खड़े रहने दो, खड़े खड़े सुन लेंगे।
रूबर शाश्वत सुखदर्शक यज्ञ स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जब जग विषयों में रच पच कर कापिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। शांत निराकुल मानस तुम तर्कों का चिंतन करते हो, करते तप सैल नदी तट पर तरु तल वर्षा की झड़ियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दानों की घड़ियों में, अंतर जाला हरती वाणी कुल घड़िया, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलिया। तुम सारी क्या कोई हो जग को देगी जग की निधिया, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणिया। शांति देव कथ पंथी गुरु अर प्रणाम मिथ्या तमनास वेखो मन के प्रकाश वेखो आपा पर आस वेखो भानु शिव कानी है ज्ञान वेखो बंदर भाग वेखो सफल पिछान वेखो पर प्रमाणी है
अनुभव बताए वेखो जीवों के जताए वेखो काहू न सताए वेखो भव्य हो रे आनी है
उतार वेखो पार के उतार वेखो
जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दिन वाणी बाल की तो जपो दिन रेन जो तेरो शरणा गये सो पावे सुख जैन
चंदन कई
मंगल गान रवा कुले जिन गए मुनि राज
श्री क्षमा सागर जी महाराज के पावन चरणों में ओम विश्वास श्री भक्त सागर जी महाराज के पावन चरणों में अनंग पद प्राप्त है अर्जुन देव पामिति स्वाहा।